नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को जानकारी देंगे। सीमा सुरक्षा बल ने आज से पंजाब सीमा पर तीनों संयुक्त जांच चौकियों पर रिट्रीट समारोह फिर से शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, सरकार का प्राथमिक लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि परिवर्तन को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को आज जानकारी देंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सात सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जिनमें 59 सांसद शामिल हैं, कल से लेकर अगले महीने की 5 तारीख के बीच कई देशों का दौरा करेंगे। प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, जेडीयू नेता संजय झा, डीएमके नेता कनिमुई करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। प्रतिनिधि मंडल कुल 32 देशों का दौरा करेगा जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल हैं। 10 दिवसीय दौरे के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद से निपटने के लिए देश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता से वैश्विक नेताओं को अवगत कराएगा। साथ ही वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संदेश को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र सिंह के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने घोषणा की है कि पंजाब सीमा समेत सभी 3 संयुक्त सैन्य चौकियों पर रिट्रीट समारोह आज फिर शुरू हो रहा है। बीएसएफ के अनुसार समारोह आज मीडिया कर्मियों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम लोगों के लिए समारोह कल से खुलेगा।
रिट्रीट समारोह को स्थगित करने का निर्णय भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के एक दिन बाद लिया गया था। सीमा रक्षा बल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच के गेट भारतीय सीमा में बंद रहेंगे। सूर्यास्त के समय झंडा उतारने के बाद भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तान रेंजर्स के उनके समकक्ष के बीच पहले की तरह औपचारिक हाथ भी नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही सीमा पर लगी कंटीली तार के पार खेत वाले किसानों को अपनी जमीन जोतने की अनुमति भी दे दी गई है। इस संबंध में बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे किसानों के साथ बैठकें की हैं जो अपनी जमीन पर खेती करना चाहते हैं और कड़ी निगरानी और सीमित समय के लिए उन्हें अनुमति दे दी गई है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
अटारी हुसैनीवाला और सादगी के रिट्रीट समारोह को इस महीने की 8 तारीख को आम लोगों के लिए निरस्त कर दिया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस दौरान उन्होंने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड्स के दृढ़ रुख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को खारिज किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर नायब सूबेदार बाना सिंह के अदम्य साहस का स्मरण कर रहे हैं।
जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पंजाब के अमृतसर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व महसूस करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होने के लिए कुलपतियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। ये अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देने पर है।
विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि बाजार नियमन और स्वतंत्रता के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती भू राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच भारत की घरेलू विकास पर निर्भरता को देखते हुए ये और भी आवश्यक है। नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में विश्व कई व्यापक व्यवधानों का साक्षी बना है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा सुरक्षा को आज की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक के रूप में रेखांकित किया है। ब्राजील में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाया। श्री मनोहर लाल ने ऊर्जा उत्पादन के विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और ऊर्जा तक पहुंच में भारत की 10 वर्ष की प्रगति की जानकारी दी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता एप्स का शुभारंभ किया। ये एप्स डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य के अनुरूप हैं। श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा कि ई शासन के उपकरण के रूप में ये एप्स देश में कृषि बुनियादी ढांचे और जन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहायक होंगे। महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने मुंबई में महायुति सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे मुंबई के राजभवन में आयोजित किया गया था। राज्य की राजनीतिक हलचलों में यह एक अहम पड़ाव माना जाता है। छगन भुजबल को प्रशासन का व्यापक अनुभव है। भुजबल को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय दिया जा सकता है। यह विभाग पहले भी उनके पास था। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज फिर शुरू हुई। शीर्ष न्यायालय अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और तथ्यों के आधार पर वक्फ घोषित संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति सहित तीन मुख्य मुद्दों पर अंतरिम निर्देशों पर विचार कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 30 अप्रैल को पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू होने के बाद से केवल 20 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आंकड़ों के मुताबिक अब तक केदारनाथ में लगभग 4 लाख, बद्रीनाथ में 2.5 लाख, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3,65,000 पार कर गई है। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सभी धामों पर स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल यूनिट वैन और एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की गई हैं। तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और विश्राम की उचित व्यवस्था भी की गई है। इस बार यात्रा के दौरान तीर्थाटन को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष निगरानी यंत्र भी सक्रिय है। ट्रैफिक प्रबंधन, मौसम अलर्ट और राहत टीमों को धामों और यात्रा मार्गों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता दी जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रकोमा के उन्मूलन के प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया है। ये सम्मान रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की वचनबद्धता के प्रति भारत के सतत प्रयासों का एक प्रमाण है। एक रिपोर्ट।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले वर्ष 8 अक्टूबर को घोषणा की कि भारत सरकार ने ट्रकोमा का उन्मूलन कर दिया है। इसके साथ ही भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में इस जन स्वास्थ्य उपलब्धि को हासिल करने वाला तीसरा देश भी बन गया है। सरकार ने ट्रकोमा उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम NPCBVI के अंतर्गत कई कदम उठाए हैं। 2019 के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम ने देश के सभी जिलों से विशिष्ट WHO साझा प्रारूप के माध्यम से केस रिपोर्ट एकत्र करके ट्रकोमा मामलों के लिए एक सतत निगरानी व्यवस्था विकसित की है। ट्रकोमा के मामलों वाले देश के 200 जिलों में 2021 से 24 के दौरान राष्ट्रीय ट्रकोमेटस ट्रिकाइसिस सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर हुआ था। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को राजस्थान में बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में फिर से विकसित किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MR श्रीनिवासन का आज तमिलनाडु के ऊटी में निधन हो गया। 95 वर्षीय वैज्ञानिक भारत के परमाणु कार्यक्रम के विशिष्ट व्यक्ति थे। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने आज अनुभवी खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने श्री नार्लिकर के निधन को वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। भारतीय नौसेना पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन जहाज को आज कर्नाटक में नौसेना के अड्डे में शामिल करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हालांकि दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हारने के बाद प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स प्लेऑफ मुकाबले के लिए पहले ही अपना स्थान पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि मुंबई में भी कल से मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को जानकारी देंगे। सीमा सुरक्षा बल ने आज से पंजाब सीमा पर 3 संयुक्त जांच चौकियों पर रिट्रीट समारोह फिर से शुरू करने की घोषणा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार का प्राथमिक लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि परिवर्तन को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।